जी बिस्मिल्लाह कीजिए।
सर मैं पूछूं?
जी प्लीज। जिंदाबाद, व्हाट ए क्वेश्चन, व्हाट ए क्वेश्चन, जिंदाबाद। इसका मतलब है कि आपके जहन ने गौर किया, माशाल्लाह। देखिए, एक इल्मुल कलम है, एक अल्लामा बिल कलम है। गौर करें, एक तरफ अल्लाह कहता है कि मेरा कलम का इल्म, इल्मुल कलम। अब ये कौन सा कलम है? अब इस कहानी को बड़े सिंपल अल्फाज में मैं अर्ज करता हूँ। हजूर सलाम ने सारी जिंदगी कलम नहीं पकड़ा, इवन दस्तखत करने के लिए भी नहीं पकड़ा, मोहर लगाते थे। कलम की मादी शक्ल को देखें तो क्या है, पीछे से वो चौड़ी है और आगे टिप बनती है उसकी, आगे से चोंच बनती है, नोक बनती है। हाँ या नहीं? एक क्रिस्टल को कलम कहते हैं। क्रिस्टल फॉर्म में क्या होता है कि वो उसके पहलू तर्श कर एक नुक्ते पे मुज्तमा हो जाते हैं। हाँ या नहीं? यानी कलम चाहे लिखने वाला ले लें या जैसे चीनी जो है ये कलमे बनती है ना, क्रिस्टल्स कहते हैं इनको, चाहे ये क्रिस्टल फॉर्म में हो चाहे पेन फॉर्म में हो। असल शक्ल क्या है कि पीछे से चौड़ी है, आगे से पतली है। हाँ या नहीं? क्यों जी? अब इसका मतलब ये हुआ कि अल्लाह तबारक व ताला तवज्जो के लिए लफ्ज कलम इस्तेमाल कर रहे हैं, क्योंकि तवज्जो फोकस होती है तो वो पीछे से पूरे जहन को ग्रिप में ली होती है और आगे से एक पॉइंट पे जाके इकट्ठी हो जाती है। हाँ या नहीं? जैसे सूरज की रोशनी मुहद्दब अच्छे से गुजरकर एक फोकल पॉइंट पे पड़ती है तो क्या हो जाती है, ये कलम की शक्ल बनी। ये शक्ल वाजे हो गई आपके जहन में? अल्लामा बिल कलम यानी तवज्जो देने पे बंदा इल्म सीखता है। हाँ या नहीं? क्यों जी?
जी सर।
अब इल्मुल कलम का मतलब है कि अल्लाह का वो इल्म जो फोकस करके एक फोकल पॉइंट पे आने के बाद कायनात बनता है, ये है इल्मुल कलम। अल्लाह का वो इल्म जो फोकल पॉइंट पे आने के बाद मजहर बना, वो इल्मुल कलम कहलाया। और अल्लामल इंसाना बिल कलम, बिल कलम, कलम से सिखाया यानी तवज्जो। अगर इंसान तवज्जो देगा, अब देखे ना, अगर टीचर बच्चों पे तवज्जो देता है तो गोया टीचर की थिंकिंग जो है वो फोकस करती है बच्चे के जहन पे, ठीक हो गया? तो एक उसकी तवज्जो, अब बच्चा फोकस ना करे, जब बच्चा फोकस करेगा तो उसकी तवज्जो की शक्ल भी तो कलम जैसी बनी ना। तो अल्लामल इंसाना बिल कलम, कलम के जरिए सिखाने का मतलब है तवज्जो देने से इंसान सीखता है। अगर तवज्जो नहीं देगा तो ये सीख नहीं सकता, ये कानून बता दिया। ठीक हो गया जी?
जी बहुत शुक्रिया सर।
कोई बात समझ भी आई या नहीं?
सर ये समझ आई है कि एक जगह फोकस होना चाहिए, कलम से मुराद एक जगह फोकस।
आप कलम की शक्ल को देखें तो पॉइंटेड तवज्जो, व्हेन योर अटेंशन इज फोकस्ड, अटेंशन का फोकस्ड होना एक होता है बिखरी हुई तवज्जो, ठीक है ना, और एक होता है कि आपकी तवज्जो फोकस्ड हो जाती है। आप झाड़ू के तिनके सारे बिखरे हुए हो तो आप उससे तो कुछ नहीं लिख सकते, लेकिन एक तिनका जो है उसको अगर आप डबो के स्याही में लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। ठीक हो गया
जी सर
जी। और कोई सवाल? जी वालेकुम अस्सलाम। किसका? जरा ये जरा बड़े पर्सपेक्टिव में इसको समझें, इसको थोड़ा बड़ा पर्सपेक्टिव करें। लफ्ज नियत नहीं, यानी उनका इरादा था या वो सोचते थे या वो ये समझे बैठे थे कि एवरीथिंग इज इन आर कंट्रोल, ठीक है। वो ये समझे बैठे थे कि भाई हम सुबह जाएंगे अपनी खेती काटेंगे, ठीक है, और उसके बुनियाद पे वो बड़े कुछ प्लान बनाए हुए थे कि मैं जनाब अपना मोहल्ले में या गली में या गांव में बड़ा तुरंबाज खान बन जाऊंगा कि मेरी इतनी फसल होगी तो मेरी इतनी दौलत आएगी तो इतनी मेरी कमाई होगी। ये सारे मंसूबे वो अल्लाह के भरोसे पे नहीं बना रहे थे, वो मादी वसाइल के जोर पे चल रहे थे। तो ये अल्लाह रब्बे करीम इसमें ये इरशाद फरमा रहे हैं कि तुम मादी वसाइल के भरोसे पे आसरे पे मत रहो। अब वाजे हो गई बात? थैंक यू। इसमें इस बात को समझ लें कि अल्लाह रब्बे करीम ने इंसान को अपने किसी मकसद के लिए पैदा किया है, हाँ या नहीं? इंसान को अल्लाह ने किसी अपने मकसद के लिए तख्लीक किया है ना। अब इंसान उस मकसद को ना खोजने के चक्कर में है ना पूरा करने के चक्कर में है, वो अपने जुगाड़ों में लगा हुआ है, अपने मकासद बनाकर बैठा है। तो और वो जो उसके मकासद हैं वो चूंकि बाजों का अल्लाह के क्लैश मकासद से क्लैश कर जाते हैं, लिहाजा अल्लाह इंसान को ये जता रहा है कि देखो तुम मेरे सामने बेबास हो अगरचे मैंने तुम्हें पूरी मखलूकात का सरबरा बनाया। अब ये वसाइल क्या सरबराही में नहीं आते? क्या उसकी रईयत में नहीं आते? क्या ये उसकी रियाया नहीं है? अल्लाह ने जब कहा कि सबको के सजदा करो तो क्या मतलब हुआ? अब यही नुक्ता जो है हमारी समझ में नहीं आके दे रहा कि भाई हम क्या है, मजबूर हैं या के बाइख्तियार हैं। भाई हम अल्लाह के सामने मजबूर हैं और कायनात में बाइख्तियार हैं। कब? जब हम खुद को अल्लाह के साथ एसोसिएट कर लेंगे, हाँ या नहीं? तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट हमारे क्लियर नहीं है। हम अंधेरे में टामक टोंगियां मार रहे हैं, कभी हम खुद को बाइख्तियार मानते हैं, कभी हम खुद को लाचार मानते हैं। नहीं, हम अल्लाह के सामने बेइख्तियार हैं, लाचार हैं। ये बात हमारी समझ में नहीं आ रही। सीधी सी बात है, आप ऑफिस में जाते हैं, अगर आपका ज़हनी इर्तबात बॉस के साथ नहीं है तो दफ्तर वाले आपके साथ क्या हशर करेंगे? अगर आपकी से बॉस के साथ मिली हुई है, आप बॉस के साथ ज़हनी तौर पे हम आहंग हैं, बॉस आपको, तो मुझे बताइए कि बाकी या उसके ऑफिस वाले आपके साथ कैसा सलूक करेंगे? क्यों जी? ये फर्क समझना है और इस फर्क के मुताबिक खुद को ट्यून करना है, खुद को बनाना है। जी
अस्सलाम वालेकुम।
जी वालेकुम सलाम
भाई, मुझे ये समझ में एक नहीं आया था, सूरह बकरा की आयत नंबर 104, या यो लबी मनु ला कुलु
जरा इसका तर्जमा फरमा दें, वो बीच में डिस्टरबेंस की वजह से मैं सुन नहीं पाया। जी
ए वो लोगों जो ईमान लाए हो ना तुमको हो राय ना बल्कि तुमको उंजरना।
हाँ राय ना और उंजरना। अब ये राय ना, ये रा यानी देखना, हम तुझे देखते हैं, लेकिन वो जबान टेढ़ी करके बोलने से ये बन जाता था ओ गुडरिये।
अच्छा।
यानी एक लफ्ज को थोड़ा सा बदल के कहने से उसके मफहूम बदल। उन जरना, हम तेरे पे नजर रखे हुए हैं, हम तेरी तरफ मतवज्जो हैं। अल्लाह रब्बे करीम इंसान को ये तमीज सिखा रहा है कि बड़ों के सामने कितना मोहतात होके बोलना चाहिए। ठीक है। अब राना का मतलब था कि हम तेरी तरफ देख रहे हैं, हम तुझे देख रहे हैं, हम हमारी नजर है तुझ पे। ठीक है। हाँ आगे बोल। लेकिन अल्लाह ने मना किया कि ये लफ्ज रायना कहने से दूसरा मफहूम इसका ये ओ गुडरिये। ठीक है। राई कहते हैं ना गुडरिये को, भेड़े चराने वाले को। तो ये एक तहकीर का तंज का एंगल निकलता है। अल्लाह ने ये आदाब महफिल सिखाए कि बड़ों के साथ कैसे बात करते हैं, उनके सामने जुमानी लफ्ज नहीं बोलने चाहिए। उन जरना, हम नजर रखे हुए हैं, हमारी यानी कहते हैं ना क्या वो कहते हैं, बसरो चश्म, बसरो चश्म यानी के सर आंखों पर, आपकी बात सर आंखों पर कहते हैं ना।
जी।
तो ये क्या है, सबमिशन का अंदाज है, सरेंडर करने का अंदाज है। किसके सामने? टीचर के सामने, अपने से बड़ों के सामने। तो ये इसमें आदाब महफिल बताए गए कि अल्फाज के चुनाव में किस कदर एहतियात करनी चाहिए। देखे ना, कुरान ने छोटी से छोटी बड़ी से बड़ी बात का तस्करा किया। तो ये छोटी छोटी बातें भी बताई हैं कि कौन सा लफ्ज कहाँ बोलना है, कहाँ नहीं बोलना। ठीक हो गया
जी,
ये वाजे हो गई बात।
जी जी
जी वाले। जी वालेकुम अस्सलाम।
सर सवाल है, सैयदना हुजूर अली सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया दुनिया आखिरत की कीमती है।
बेशक।
जी सर इसकी थोड़ी वजाहत कीजिए।
असल में यहाँ जो दुनिया में हम करते हैं, हमें उसका अंजाम भुगतना पड़ता है। अब ये दुनिया मजरत आखरा, दुनिया जो है ये आखरत की खेती है। मजरा कहते हैं जरात को, यानी उगाई गई चीज। अब आपने जो भी मेहनत की, जैसी भी मेहनत की, जैसी खेती तैयार होगी, उसका रिजल्ट कौन एंजॉय करेगा? हम करेंगे। अगर हम दुनिया को इस तरह इस्तेमाल करेंगे जिस तरह अल्लाह चाहता है, तो क्या हो गया, नतीजे अच्छे निकलेंगे। नताइज से मुराद है हमारी अगली जिंदगी। देखे ना, खेत खत्म होता है, साल खत्म होता है, मौसम खत्म होता है, तो खेती पक जाती है। इसी तरह दुनिया की जिंदगी एक मुकर्रा मुद्दत के लिए, 50 साल है या 100 साल है, हाँ या नहीं? अगर हम दुनिया की जिंदगी को इस तरह इस्तेमाल करें गोया हम एक खेत उगा रहे हैं अगली जिंदगी के लिए, तो हम कितने मोहतात होंगे, उसकी नलाई करेंगे, सफाई करेंगे, उसको पानी देंगे, उसकी गोडी करेंगे, उसमें बीज डालेंगे, जो भी है उगाएंगे। अब यहां हमने कीकर बोए तो आगे जाके हम सेब तो नहीं काट सकेंगे। अगर आपने आम बोए तो आम ही खाएंगे ना, ये तो नहीं है कि वहां पे आपको थोर मिले। लेकिन अगर मैं यहाँ लोगों को तकलीफ देता हूँ, लोगों के लिए एसियत का बायस बनता हूँ, कैक्टस उगाता हूँ, तो उसका नतीजा क्या निकलेगा? वही कांटे मुझे भी तो चुभेंगे। बात वाजे हो गई?
जी नहीं, मेरे पास थैंक यू सर।
वेलकम जी। जनाब और कोई सवाल?
सर मेरा एक सवाल, शेर का मतलब है, मियां मोहम्मद बख्श का सलाम है ना, वो मरफाना शेर कहते हैं, क्या मैं वो पूछ सकती हूँ उसका?
ट्राई कर लेते हैं जी, अगर मुझे पता हुआ तो अर्ज कर दूंगा जी।
सर बड़ी देर से मैं सोच रही हूँ, इस देर मुझे समझ नहीं आ रही कि वो उन्होंने एक जगह पंजाबी में है कि
इरशाद,
पाग पाग तेरे दी राखी कर कर मैं सारी उम्र गुजारी, जदो फल पकन ते आया ते लेके और बिपारी।
जी हाँ, यानी ये दुनिया से तवक्कुआत रखने की बात की है उन्होंने। अब आप गौर करें कि इंसान को अल्लाह वास्ते काम करना चाहिए या तवक्कुआत। मसलन आपने औलाद से तवक्कुआत रखी कि ये मेरे बुढ़ापे का सहारा बनेंगी। अब क्या हुआ, जब बच्चे जवान हुए तो उनकी बीवियां आईं और वो उन्हें ले गईं। अब आप क्या कर रहे हैं, वो आगे से आपको धमकी देते हैं, मैं तुम्हें एडी के ये थिंग क्या ओल्ड हाउस में जमा करा दूंगा, ओल्ड होम में हैं? तो ये जो मायूसी है दुनिया के साथ तवक्कुआत रखने की और गलत तरीके से दुनिया को निम, ये उसका तذکرہ किया उन्होंने शेर की सूरत में। वेलकम।
यानी जो हम औलाद को पालते हैं, बड़ा करते हैं, उसे तवक्कुआत रखते हैं, वो आगे से यानी और उनकी सोच होती है या उनको ले जाती है कुछ भी।
हाँ मसलन देखे ना, बेटी है, आप समझते हैं बेटी मेरी निगेबा,
इनका फल खाएंगे, इनकी कमाई खाएंगे
जी। तो अब क्या के जी बिल्कुल बिल्कुल।
थैंक यू सो मच।
वेलकम 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 जी।
हेलो अस्सलाम वालेकुम सर, मैं बात कर सकती हूँ?
जी जी इरशाद फरमाएं।
सर बात यह है कि अब हम जब अपनी तारीख पढ़ते हैं, इस्लामिया पढ़ते हैं, इसमें शायरों को भी इतना बुरा कहा जाता था, शुक्र कि मतलब शायरों को कहीं भी
नहीं,
भी ये लोगों को भटकाते हैं, लोगों को
ये तो कुरान की आयत है, ये कुरान की आयत है
जी
के शायरों के ताकुब में मत चलो, ये तो वादियों में घूमते हैं। क्या मतलब? देखिए सीधी सी बात है, सुने ना, सीधी सी बात है कि शायर कोई मुसलह नहीं होता, इस्लाह नहीं करता, शायर सिर्फ कैफियत का इजहार करता है। क्या करता है? उसके पास कोई पूरा प्रोग्राम नहीं होता, जैसे कि अंबिया कराम पूरा प्रोग्राम देते हैं, आपको छोटी से छोटी बात सिखाते हैं, समझाते हैं किस तरह से जिंदगी गुजारो, आगे जिंदगी का क्या सीन होगा उसके लिए तैयारी करो, ठीक है। लेकिन शायर जो है वो महज एक वक्ती कैफियत का इजहार करता है, आप उस पर वाह वाह करें या उसको बुरा कहें या अच्छा समझें, दैट इज ऑल अप टू यू। शुआरा ने बड़ा काम किया, जैसे अब इल्लामा इकबाल ने क्या किया है, उसने कुरान की आयात को नज्म किया, इसलिए उसकी शायरी में एक क्या कहते हैं फर्क दिखता है, एक पैगाम मिलता है। लेकिन उसने किससे इस्तफादा किया? कुरान से। अब हम इकबाल को तो फॉलो करें, कुरान को फॉलो ना करें, तो ये क्या बात हुई? क्यों जी?
ठीक है, बाकी सही बात है।
यानी के बड़ी सिंपल सी बात है कि शुआरा क्या करते हैं, वो अल्फाज को वजन में, बहर में, काफिया और रदीफ की पाबंदी के साथ इस तरह कहते हैं कि बात अगले को याद करनी आसान हो जाए, ठीक है। लेकिन उनकी बात अल्लाह की बात तो नहीं है ना, है तो एक बंदे ही की बात ना। अब मैं बंदे की बात को प्रेफर करता हूँ, इतना मेरा टेस्ट है, मैं सारा दिन शेरो शायरी सुनता हूँ, लेकिन अल्लाह का कलाम समझने का जौक मुझ में नहीं है तो क्या होगा मेरा अंजाम, अल्लाह के नजदीक मेरी क्या हैसियत हुई कि भाई तू बंदों की बात को तवज्जो देता था, मेरी बात क्यों क्यों तूने पीछे फेंका। मतलब है शौरा ने बड़ी अच्छी अच्छी बातें की हैं, लेकिन वो एक महज टुकड़ा है, पूरी बात नहीं कोई कह सका। पूरी बात अल्लाह ने कही है और अल्लाह ही की बात मुकम्मल होती है। अब हजूर सलाम ने एक जुमला इरशाद फरमाया, मन अरफा नफ्सहु फकद अरफा रब्बहु, जिसने खुद को जान लिया उसने अल्लाह को जान लिया है। अब ये क्या शायरी ही नहीं है, कैसी उसका रिदम है, कैसा उसका वजन है। दूसरा देखे, मौत कबले अंतुम मौता, मरना सीखो मरने से पहले, यानी मौत के हवास से आशना हो जाओ। अब इतनी गहरी बात, अब ये चार लफ्जों में कह दिया हजूर सलाम ने, अल जन्ना तो तहते इकदाम उम्मातों को, हमने तर्जमा ही गलत कर दिया। अब देखें नबी जो होता है वो पूरा प्रोग्राम देता है, शुआरा जितनी भी बातें कर रहे हैं वो सारी की सारी कुरान में किसी न किसी तौर पे बयान हुई हुई है, उनसे कुरान से बढ़कर तो नहीं कोई प्रोग्राम दे सकता, ठीक हो गया। तो ये एक जौक की तस्कीन के लिए आपने शेर व शायरी पढ़ ली, सुन ली, इंजॉय कर लिया, किसी ने मनकबत लिख दी तो किसी ने नात लिख दी तो किसी ने हमद लिख दी, तो आपने अच्छा कहा, सुना, इंजॉय किया, लेकिन उसमें कोई प्रोग्राम तो नहीं है ना। लेकिन कुरान में शायराना सिफात भी सारी मौजूद हैं और बात भी मुकम्मल कही गई है, इसलिए मना किया है कुरान ने कि शायरों के पीछे मत चलो, ये तो वादियों में घूमते हैं, कभी एक वादी में कभी दूसरे, यानी उनके सामने कोई मंजिल, कोई मकसद वाज़े नहीं है। जी
अच्छा, एक एक क्वेश्चन और है सर, ये जो सूरत दहर के बारे में जरा थोड़ी सी मुझे बता दें, मैंने उसको बड़े समझने की कोशिश की, आपने कहा कि इसमें सारे जमाने बताए हुए हैं ठीक है, मगर इसमें इतनी वो तफसील समझ नहीं आती कि पहले क्या था, फिर क्या हुआ, फिर सूरत दहर के स्टार्टिंग मुझे थोड़ी सी समझा दें।
देखिए सूरत दहर को आप खुद पढ़ें और उसको समझें, ठीक है।
मैंने पढ़ के समझा है ना,
मगर
जो गहराई आप समझाते
हैं ना, वो तो तभी होगा ना जब आप और मैं मिलकर पढ़े हैं, वो तो तब हो सकता है। अब मैंने एक बात अर्ज की कि भाई दहर, वक्त, असर और हीन, ये चार दर्जे हैं जमाने के। अब सूरह दहर में अल्लाह ने उस जमाने का तذکرہ किया है जो अल्लाह के ज़हन में पूरी कायनातों के प्रोग्राम के लिए वक्त है, वो वक्त जो सारी कायनातों को मुहित है, अल्लाह ने उसके लिए लफ्ज़ दहर इस्तेमाल किया, ठीक है। फिर उसके बाद एक कायनात का वक्त जो है, एक कायनात का अजल से लेकर अबद तक या उसके आगाज से लेकर उसके अख्ताम तक के वक्त का पूरा वक्फा जो है, इसको वक्त कहा है। और जब आगे कायनात में हम देखते हैं तो नौए हैं, इंसान एक नौ है, शेर एक नौ है, कौवा एक नौ है, बकरी एक नौ है, चिड़िया एक नौ है, आम एक नौ है, अमरूद एक नौ है, ठीक हो गया। अब एक नौ के वक्त को अल्लाह ने असर कहा है, जब नौ के आगे हम देखते हैं तो अफराद आते हैं, यानी हर नौ में फर्द हैं। जैसे अब बनी नौ आदम, अब आदम की औलाद की नौ, उसमें से हर बंदा फर्द है, इनफरादी तौर पे एक बंदा है। ये पूरी नौ को भी रिप्रेजेंट कर रहा है और अपनी शख्सियत को भी। तो ये जो इनफरादी सतह पे वक्त है उसको अल्लाह ने हीन करार दिया है। हीन को हजूर कलंदर बाब औलिया ने खिला कहा है। एक खिला है जिसके अंदर इतलात भर गई तो वो एक फर्द बन गया। हीनम मिनत दहर, यानी दहर में से दर्जा ब दर्जा नीचे उतरते हुए कायनाती सतह से आप नोई सतह पे आए, नोई सतह से इनफरादी सतह पे आए। तो ये वक्त को डिफाइन किया है, दर्जे बताए हैं कुरान ने। ठीक हो गया जी?
ठीक हो गया।
अब एक और जरूरी बात इस ज़ेल में सुन रखें कि वक्त के दर्जे तो चार हैं, यानी अल्लाह के जहन में वक्त जो है, कायनात में जो है, नो में है, और उसके बाद अफराद में। लेकिन इसको इस्तेमाल करने के आगे तीन तरीके हैं, तीन स्टाइल हैं। एक है तरतीब जमानी, यानी एक सीरियल टाइम है। एक जमाने मतवातर कहलाता है, दूसरा जमाने गैर मतवातर कहलाता है। जो हम बेदारी में इस्तेमाल करते हैं वो जमाने मतवातर है, यानी सीरियल टाइम है। जो हम नींद की हालत में इस्तेमाल करते हैं उसको नॉन सीरियल टाइम कहते हैं। और नॉन सीरियल टाइम जो है, इसमें चीजों में तरतीब वो नहीं होती जो सीरियल टाइम में होती है। मसलन अब देखें ना, इतवार का दिन कब आएगा? जब आप जुमा और हफ्ता एक एक सेकंड करके गुजार लेंगे। ये है जमानी, तरतीब जमानी। तो इसलिए इसका नाम जमाने मतवातर रखा। अब ख्वाब में आप देखते हैं कि आज मैं जुमे रात को बात कर रही हूँ, अगले दिन आप कहते हैं नहीं आज तो इतवार है। यानी ख्वाब में ये दरमियानी वक्त बगैर किसी तरतीब के बारे दो गया। और इसी तरह तीसरा दर्जा है रियल टाइम का, जिसमें सारी तरतीब एक जगह जमा हो गई, सारी बेतरतीबी एक जगह जमा हो गई, कोई तरतीब नहीं है, कोई बेतरतीबी नहीं है, उसको रियल टाइम कहते हैं।
वो कैसे मतलब?
अब इसकी मिसाल ये है कि आपने किताब पढ़ी, किताब पढ़ी
जी।
या जैसे आप ये रिकॉर्डिंग सुन रहे हैं, ये मेरी बात सुन रहे हैं, तो मैं एक एक लफ्ज अर्ज कर रहा हूँ। आप ये एक एक लफ्ज को जोड़कर जुमला समझ रहे हैं तो ये सीरियल टाइम हुआ। ठीक है? अब आप ये रिकॉर्डिंग सुनते हुए कहीं शुरू में सुन लेते हैं दो जुमले, कहीं दरमियान में से सुन लेते हैं, कहीं आखिर में सुन लेते हैं, कहीं पलट के बीच में से सुन लेते हैं, कहीं और शुरू में आ जाते हैं। या जैसे किताब पढ़ रहे हैं तो उसका फर्ज करें कि आप एक तरीका तो ये ना लफ्जन लफ्जन सतर बाई सतर, पेज बाई पेज, पैरा बाई पैरा पढ़ते हैं। ये सीरियल टाइम की मिसाल है। अब आप किताब उठाते हैं, उसमें से देखते हैं दसवें सफ़े पे क्या लिखा है, पचासवें पे क्या लिखा है, अट्ठावनवें पे क्या लिखा है, सौवें पे क्या लिखा है, 110 पे क्या लिखा है, 120 पे क्या लिखा है, 275 पे क्या लिखा है। फिर पलटते हैं बीच में से 44 पे क्या लिखा है, 23 पे क्या लिखा है। यानी ये बेतरतीबी से उसको देखते हैं तो ये नॉन सीरियल टाइम की मिसाल है। अब आपने किताब पढ़ ली, ठीक है? अब किताब पे नजर पड़ी, आपकी किताब पे नजर पड़ी, अच्छा ये तस्करा कलंदर बाब औलिया है, ठीक है, या ये कलंदर शऊर किताब है। किताब पे नजर पड़ते ही आपके जहन में आ गया, हाँ इसमें ये बात लिखी है, आपको पूरा पढ़ना नहीं पड़ा लेकिन पूरे उसकी बात, उसका खलासा आपके जहन में आ गया, ये रियल टाइम की मिसाल है। ठीक हो गया? अब आप एक बंदे को देखते हैं, देखे ना, मैं और आप इस वक्त बात कर रहे हैं तो ये हमारी सीरियल टाइम में गुफ्तगु हो रही है। अब आप मुझे देखते हैं, मैं आपको देखता हूँ, ठीक है। आपके जहन में मेरे बचपन का कोई वाक्या याद आ गया, या मुझे आपके नौजवानी का कोई किस्सा आपका बताया हुआ जहन में आ गया, तो ये नॉन सीरियल टाइम हो गया। लेकिन आपने मुझे देखा और आपने एक पूरा तासुर कायम किया कि ये मकसूद साहब हैं, तो ये रियल टाइम के दर्जा हो गया। क्लियर हो गई बात?
रियल टाइम जी, शुक्रिया।
मेहरबानी जी आपकी जी। और कोई सवाल?
और सवाल तो अभी सुबह बहुत आ रहे हैं। मैंने आपसे ये करना था, ये जो लहरों का सांप है ना, इसके ऊपर भी मैंने आपसे डिस्कशन करवानी थी। एक लहरों का और एक रंग का, ये इधर आप ही फिर कर लेंगे अगर आप पारी नहीं है इस वक्त तो। ये लहरें आती कहाँ से है, ये पहले बस मैंने
लहरें जहन से
आती
कहाँ
से
जहन से सारी लहरें जहन से आती हैं, सारी लहरें जहन से आती हैं, पहले दर्जे पे अल्लाह के जहन से, फिर उसके बाद उसकी मखलूकात के जहन से। इन तीन मखलूकात के जहन से जो लहरें निकलती हैं वो ज्यादा इफेक्टिव हैं फरिश्तों के, जिन्नात के और इंसान के। ये सारा निजाम लहरों का है। पहले अल्लाह ने जो जहन से उसके लहरें निकली तो ये मखलूकात वजूद में आ गई। ये सब क्या है? लहरों के नतीजे में ये तीन मखलूकात बनी। अब इन तीन मखलूकात के जहन से निकलने वाली लहरें आगे चीजें बना रही हैं। मिसाल, एक बंदा था, ठीक है, ये कराची एक वक्त में कुछ भी नहीं था, यहाँ खाली जगह थी, चंद लोग आए यहाँ पे बस गए। आज देखें कराची, लोगों के जहनों के अंदर से निकलने वाली लहरों ने कहीं घर बनाए, कहीं प्लाजे बनाए, कहीं मार्केटें बनाई, कहीं सड़कें बनाई, कहीं ऑफिस बनाए, कहीं अदालतें बनाई। ये सब कहाँ से आ रहा है? इंसानों के जहन से निकलने वाली चीजें डिस्प्ले हो रही है। आपने ये घर जो बनाया, ये घर किसने बनाया? आप कहते हैं अल्लाह ने बनाया। अल्लाह ने आपको बनाया, फिर आपके अंदर ये सलाहियतें रखी कि आपने सोचा कि घर होना चाहिए, तो आपने घर का नक्शा बनाया, उसके लिए मजदूर इकट्ठे किए, ठेकेदार लाए, सरिया लाए, सीमेंट लाए, बजरी लाए, ईंटें लाए, प्लस्तर हुआ, लकड़ी का काम हुआ, लोहार ने काम किया, तरखा, ये सारों को आपने ऑर्गेनाइज किया तो घर बन गया। अब ये घर आपकी सोचों की लहरों का नतीजा है, हाँ या नहीं? तो ये लहरें कहाँ से आती हैं? ये लहरें अल्लाह के जहन से आती हैं और उसके बाद उसकी मखलूक के जहन से आती हैं। अभी आपको इतनी बड़ी मिसाल दी ना कि आप खाना पकाते हैं, तो ये खाना पकाने की लहरें जो हैं ये आपके अंदर काम कर रही हैं ना। आपका जहन, अगर आपका जहन हरकत ना करे, ये लहरें ही ना पैदा करे खाने की, तो आप खाना पका लेंगी? आप जो कुछ भी करते हैं वो जहन की वर्किंग है, ठीक है। जहन की वर्किंग के लिए जो एनर्जी चाहिए उसे रूह कहते हैं। तो रूह वो ताकत दे रही है और जहन प्रोसेस कर रहा है इत्तलात को, और इत्तलात को प्रोसेस करके जो लहरें नशर करता है वो मजर बनती हैं। आप उन चीजों को देखते हैं, चीजें भी ये लहरें नशर कर रही हैं, इत्तलात ही तो नशर कर रही हैं। अब आप एक पर्दे को कमरे में देखते हैं तो आपको क्या कितनी इत्तलात आ रही हैं कि ये रेशमी है, ये सूती है, ये इस पे ये डिजाइन बना हुआ है, इसका ये रंग है, ये सब क्या लहरें ही तो हैं। अब ये कपड़ा किसने बनाया, पर्दा किसने बनाया? बनाने वाले के जहन की लहरें एक जगह जमा हो गई तो पर्दा बन गया, आप देख रहे हैं, आप पर्दे को एंजॉय कर रहे हैं, तो आप भी तो लहरें ही वसूल करके उसको प्रोसेस कर रहे हैं ना। तो ये सारा निजाम यूं लहरों पे कायम है। जब ये लहरें नजर आंख से नजर आती हैं तो इन्हें आप रोशनी की लहरें कहते हैं, ये रंगों की लहरें कहते हैं, कान से सुनते हैं तो ये आवाज की लहरें बन जाती हैं, जब ये मोबाइल पे चल रही हैं तो ये रेडियो की लहरें कहला रही हैं। सारा निजाम लहरों पे, ख्यालात भी लहर हैं। जब ये ख्यालात एक दूसरे को बराह रास्त तबादला ख्याल करते हैं तो आप कहते हैं टेलीपैथी हो रही है। ठीक हो गया?
ठीक हो गया
जी। जी और कोई बात?
और ये बात है कि अगर आप बहुत करें तीसों पर हमें इस तरह करा देंगे, हम सब लोग आपसे इस तरह समझते जाएं थोड़ा थोड़ा कि नहीं
तो वो मैंने तरीका अर्ज किया ना कि आप किताब कुरान हकीम और लाशऊर पढ़ें, उसके बाद तीसवां पारा पढ़ें, जहां रुकावट हो आप मैसेज करें, मैं इंशाल्लाह उसके लिए हाजिर हूँ। ठीक है, ये तो सवाल जवाब की नशिस्त है ना भाई, ये तो सवाल जवाब की नशिस्त है ना, यहाँ पे हम कोई वो थोड़े कर रहे हैं। जी आप सवाल करें। और कोई सवाल? जी चले फिर, रहती है बात इंशाल्लाह जी, अगर नहीं है कोई सवाल तो। जी इरशाद
सूरह रात का।
जी
सूरह रात में आयत नंबर 39 में वह है, इंदहु उम्मुल किताब, फिर उसी सूरत में है आगे वमन इंदहु उम्मुल किताब, तो ये दो किताबें, तो उसका जरा सा
नहीं, किताब का मतलब है सांचा, किताब का तर्जमा आप लें सांचा। हेलो अगर आप किताब का तर्जमा किताब रखेंगे उम्मुल किताब, उम्मुल किताब का मतलब है कि सांचों की अम्मा यानी मास्टर की, जैसे एक ताले को आप मतलब कई ताले आप एक ही चाबी से खोलते हैं तो वो मास्टर की कहलाती है, हाँ या नहीं? मास्टर की का मतलब हो गया उम्मुल किताब, यानी के जो सांचों की अम्मा है वो अल्लाह का जहन है, अल्लाह के जहन में जो प्रोग्राम है वो सारे सांचों की अम्मा है, इंदहू उसी के पास है, यानी उसी के पास है, वो जिस तरह से चाहे सांचे में तब्दीली करे या ना करे। ठीक हो गया जी?
सर हम कनाडा के साथ भी मिले हुए हैं, कनाडा वालों पर भी क्वेश्चन आ रहे हैं।
नहीं ये तो आप डिस्कशन ग्रुप में हैं, कनाडा वाले कहाँ से? हाँ जी वो जी जी वो वहाँ कनाडा से हैं। जी हाँ वो भी इस ग्रुप में हैं। हाँ जी जी
सर सूरह नास में है बस फाजिल खन्नास का मतलब क्या है?
पीछे हटाने वाला, हर चीज जो आपको आपके टारगेट से हटाए, देखे ना आप एक टारगेट तय करके الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. ٹھیک ہے, اس سے پہلے ذرا یہ پڑھیے کیا ہے آیت خناس والی. الذي
يوسوس في صدور الناس,
اس سے پہلے خناس کا لفظ جس نے من شر الوسواس الخناس, خناس اور وسوسے کے شر سے, ایسا وسوسہ جو پیچھے ہٹائے. ایک تو وسوسہ جو کام سے منع کرتا ہے, دیکھیں نا وسوسے کا مطلب ہے کام سے منع کرنا. آپ ایک کام کرنا چاہتے ہیں, آپ کے دل میں وسوسہ آتا ہے یہ نہیں ہو سکتا, پھر آتا ہے کہ نہیں نہیں یہ نہیں ہو سکتا اسے چھوڑ دو, تو یہ خناس ہوا. ٹھیک ہو گیا, یعنی اللہ کے نظام میں پیچھے ہٹنے سے منع کیا گیا. آپ جب دیکھیں پودے میں سے, یعنی بیج جب پودا بن رہا ہوتا ہے تو بیج جب پودے میں سے جب یعنی بیج میں سے جب پودا نکلتا ہے تو کہیں وہ پیچھے ہٹتا ہے, کہیں وہ واپس اپنا سر بیج میں گھسیڑتا ہے, وہ آگے اور آگے ہی بڑھتا ہے. وہ کسی مشکل کو کسی دشواری کو سامنے خاطر میں نہیں لاتا. اللہ رب کریم آپ سے یہ توقع کرتے ہیں کہ جب آپ کسی راستے پہ چلنا شروع کر دیں, طے کر لیں کہ میں نے اس طرف بڑھنا ہے, اللہ کی طرف بڑھنا ہے, تو کسی وسوسے کی وجہ سے نہ ہٹیں اور نہ پیچھے ہٹیں, نہ اس کو چھوڑیں اور نہ ہٹیں. شر الوسواس الخناس, یعنی بچا مجھے وسوسے اور پیچھے ہٹنے والے خیال کے شر سے. چاہے یہ جنات میں سے کوئی تجویز کرے یا انسانوں میں سے. ٹھیک ہو گیا,
جی سر شکریہ.
چلیں اپنا خیال رکھیے, پھر رہتی ہے بات. اللہ حافظ.
اللہ حافظ.